भागवत सार की श्रृंखला में आज 27वें अध्याय पर चर्चा है, चौथे स्कंद के, जिसका नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और कालकन्या का चरित्र। इसके एक श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। शयानुनद्धं मदो महामना महाहतल्पे महिषी भुजोपधि तामेव वीरो मनुते परं यतस् तमोभिभूतो न निजं परं च यत् शयानुनद्ध्वं मदो महामना महाहतल्पे महिषी भुजोपधि तामेव वीरो मनुते परं यतस् तमोभिभूतो न निजं परं च यत् शयानुनद्धं मदो महामना महाहृतल्पे महिषी भुजोपधि तामेव वीरो मनुते परं यत् तमोभिभूतो न निजं परं च यत्
Yeah.
शयानः लेटा हुआ उन्नद्धमद आध्यात्मिक मोहग्रस्त महामनः मनस्वी महाअर्ह तल्पे बहुमूल्य शय्या पर महिषी रानी की भुजः बाहें उपधि तकिया ताम उसको एव निश्चय ही वीर वीर मनुते उसने मान लिया था परम जीवन लक्ष्य यतः जिससे तमः अज्ञान से अभिभूतः आवृत्त न नहीं निजम अपना परम परमेश्वर च तथा यत जो अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार आध्यात्मिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न रहा। तात्पर्य मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य की को अपने आप का दर्शन करना होता है जिसे श्लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप का और न भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है महत् सेवां द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। यदि वे महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वे स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए तमो द्वारम अर्थात नारकीय जीवन का अंधकारमय क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन महात्मा बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था। किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश रूप मानना। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी छहों इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इससे पहले कि इस अध्याय पर चर्चा करें, सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवश अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगीन मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोच तहकर आनमुंच कदाचिन्मा प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा।
हरे कृष्ण। पुरंजन की कथा अब आगे बढ़ा रहे हैं इस अध्याय में, जहां चंडवेग जो गंधर्वों के राजा हैं वो आक्रमण करेंगे पुरंजन की नगरी पर अपने सैनिकों के साथ, और साथ ही साथ काल की पुत्री काल कन्या उसका भी वर्णन किया गया है। तो प्रायः यह अध्याय तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो करीब 12वें श्लोक तक है, उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे पुरंजन अपनी पत्नी के साथ भोग करता है, आनंद लेता है भौतिक जगत में। दूसरा भाग जहाँ कैसे चंडवेग अर्थात काल आक्रमण करता है पुरंजन की नगरी पर अर्थात इस शरीर पर, और तीसरा भाग जो करीब 22वें श्लोक से प्रारंभ होता है और अंतिम श्लोक तक जाता है अध्याय के 8-9 श्लोकों में, जहाँ जरा का वर्णन है। जरा अर्थात जो काल की पुत्री है, इसलिए उसको काल कन्या भी कहा गया है, तो उसका भी प्रवेश होता है और वो अपने पति को ढूंढ रही है तो क्या कार्य करती है उसका वर्णन किया गया। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है। प्रमुखतः इस अध्याय में तात्पर्यों में प्रभुपाद पापमय जीवन का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति पापमय जीवन में लगकर अपने समय को बर्बाद करता है। तो इस अध्याय की प्रमुखता समय की उपयोगिता पर कही गई है कि हमें कैसे समय का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ होता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा भोगों में आसक्ति में नहीं लगना चाहिए, विशेषतः उन लोगों को जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन में हैं। हाँ, वैरागियों को तो लगना ही नहीं चाहिए लेकिन गृहस्थों को भी नहीं लगना चाहिए। तो उनके वर्णन को इस अध्याय में प्रभुपाद ने तात्पर्यों में दिया है। तो पहले वर्णन किया गया कि बड़ा आसक्त हो गया अपनी पत्नी से। अब हमने पिछले अध्याय में देखा कि वो जंगल से वापस आया, फिर नहा धोकर तैयार हुआ और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। जैसे जीव पापपूर्ण कार्यों को बंद करके फिर गुरु का निर्देश स्वीकार करके आध्यात्मिक जीवन का पालन प्रारंभ करता है, अपनी पत्नी को ढूंढना अर्थात कृष्ण भावना अमृत को ढूंढना प्रारंभ करता है। तो पुरंजन ने ये कर दिया, अर्थात कहना चाहिए इस्कॉन में नया भक्त बन गया, वो न्यू डिवोटी हो गया, जप करना शुरू कर दिया, अब ढूंढ रहा है कृष्ण को, सारे जो पापपूर्ण कार्य बंद कर दिए, लेकिन अपनी पत्नी से आसक्त हो गया। तो अर्थात यहाँ क्या खतरे दिखाए जा रहे हैं कि एक दृष्टि में पत्नी के साथ रहना ये तो शास्त्र सम्मत है, इसमें तो कोई गलत नहीं है, अवैध संग को मना किया गया है, लेकिन वैध संग को मना नहीं किया गया, तो फिर पत्नी के साथ रहने में तो कोई गलती नहीं है। तो पहले बताया गया कि अवैध संग करना, पापपूर्ण जीवन जीना वो खराब है, लेकिन भक्ति में आने के बाद जब व्यक्ति ढूंढ रहा है तो उसको आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए वैध चीजों में भी। अपनी पत्नी से भी अगर कोई आसक्त हो जाता है तो क्या परिणाम होता है इसका वर्णन किया गया। तो बहुत आसक्त हो गया सदैव उसके साथ ही रहना। प्रभुपाद तात्पर्यों में लिखते हैं कि गृहस्थ जीवन के ये खतरे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है तो बड़ा आसक्त हो जाता है, विशेषतः अगर पत्नी सुंदर हो। वैसे नहीं भी हो तो भी हर पति को अपनी पत्नी सुंदर ही दिखाई देती है, दूसरों को नहीं लगती है लेकिन उसको लगती है, क्योंकि बड़ा आकृष्ट है, आकर्षित है, तो उसको अपनी पत्नी बहुत सुंदर लगती है। और अगर गलती से वो सही में सुंदर हो तब तो चाणक्य पंडित कहते हैं रूपवती भार्या जो है शत्रु, वो शत्रु है, भार्या यानी पत्नी, रूपवती यानी सुंदर, शत्रु यानी शत्रु। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि रूपवती भार्या शत्रु। क्यों शत्रु है? वो व्यक्ति जीवन भर उससे आसक्त रहेगा क्योंकि सुंदरता के प्रति आकृष्ट होगा, और दूसरा हमेशा चिंता में रहेगा कहीं कोई दूसरा मेरी पत्नी के प्रति आकृष्ट ना हो जाए, तो इसी चिंता में उसका सारा जीवन जाएगा। तो पारिवारिक जीवन में बहुत से, हालांकि पारिवारिक जीवन एक दृष्टि से शास्त्रों में और भागवत में ही कई स्थानों पर उसको सुरक्षित स्थान माना गया है कि पारिवारिक जीवन सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अगर परिवार नहीं मिला, पत्नी नहीं मिली, तो हो सकता है कि वो कुछ और गलत काम, अवैध काम कर दे, तो इससे अच्छा है पत्नी हो, पत्नी के संग में रहे। और पत्नी की तुलना ऐसे की गई है कि वो रक्षा करती है पति की, ताकि पति बाहरी, उसकी इंद्रियां बाहरी दृष्टि से जाकर कोई ऐसा गलत काम ना करें, तो पत्नी संतुष्ट रखकर उसको एक बनाए रखती है दुर्ग में, उसको उसकी रक्षा करती है। तो एक दृष्टि से पारिवारिक जीवन अच्छा है, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना ये खतरनाक है। अर्थात वैरागी जीवन और पारिवारिक जीवन की तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि कलयुग में पारिवारिक जीवन सुरक्षित है, क्योंकि वैरागी बनेंगे और फिर वैराग्य को संभाल नहीं पाएंगे तो फिर क्या लाभ है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास उन्होंने लिया और पुरी में आए तो लोगों ने कहा इतना युवा अवस्था, 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, तो इतनी युवा अवस्था में सन्यासी हो गया, इसको तो वेदांत पढ़ना चाहिए नहीं तो संभाल नहीं पाएगा अपने सन्यास को। तो इसीलिए अगर कलयुग की तुलना की जाए तो एक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से लगता है कि सुरक्षित स्थान है पारिवारिक जीवन, लेकिन है नहीं। इस कलयुग में कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। जब तक व्यक्ति भगवान की शरण नहीं जाता, फिर वो चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी, कभी सुरक्षा नहीं है। एक ही सुरक्षा है हमारी, श्री कृष्ण की शरण। तो इसीलिए ऐसी सुरक्षा हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब पारिवारिक जीवन में आसक्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा आसक्त तो होते हैं हम, तब फिर वो सुरक्षा चली जाती है। इसीलिए पारिवारिक जीवन, हालांकि थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति की अनुमति है, लेकिन अगर सही मार्ग निर्देशन में नहीं रहे, सही मार्ग पर नहीं रहे, आध्यात्मिक जीवन को महत्व देकर नहीं रहे, तो वही पारिवारिक जीवन नाश का कारण बनेगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। दूसरी ओर ब्रह्मचारी जीवन भी ऐसा ही है। ब्रह्मचारी जीवन बहुत सुरक्षित जीवन है, क्योंकि भोगों से दूर रहते हैं, आसक्तियों से दूर रहते हैं, परिवार की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, धन की आसक्ति, सत्ता की आसक्ति, अपने रिश्तेदारों की आसक्ति, इससे दूर रहते हैं। इसलिए बड़ा सुरक्षित स्थान है भक्ति करने के लिए। लेकिन अगर भगवान की शरण नहीं ली, श्री कृष्ण के शरण में नहीं गए, श्री कृष्ण शरणम ममा, अगर हम श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं, तो फिर ये ब्रह्मचारी जीवन ही खतरनाक हो जाएगा, खतरों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कार्य कर बैठेंगे जो हमें कृष्ण से दूर ले जाएगा, हम ऐसे पाप करेंगे जो साधारणतः बड़े घृणित माने जाते हैं। तो इसीलिए चाहे कहीं भी हम लोग रहें, श्री कृष्ण को अगर जीवन का केंद्र मानकर रहें, तब फिर ये सुरक्षित स्थान है, विशेषतः पारिवारिक जीवन का, जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया कि पारिवारिक जीवन में बड़ा संभालना चाहिए। बहुत से आकर्षण है पारिवारिक जीवन में। पहला आकर्षण स्त्री का है, जैसे पुरुष और स्त्री के प्रति ये स्वाभाविक आकर्षण होता है। इसलिए रूप गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं। हमने जब पहली बार ये उदाहरण सुना रूप गोस्वामी का, तो अच्छा नहीं लगा कि रूप गोस्वामी किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा कि मेरा आकर्षण आपके प्रति ऐसा होना चाहिए जैसा एक युवक का युवती के प्रति होता। अरे तुलना ठीक नहीं की रूप गोस्वामी ने, युवक युवती का आकर्षण और कहां कृष्ण के प्रति आकर्षण। लेकिन बाद में समझ में आया कि वो तीव्रता की बात कर रहे थे, कि कितना तीव्र होता है वो आकर्षण एक युवक को युवती के प्रति, और स्वाभाविक होता है, कोई उसको उत्पन्न नहीं करना पड़ता। तो ऐसा स्वाभाविक और ऐसा तीव्र आकर्षण कृष्ण के प्रति होना चाहिए। इसलिए एकदम सही उदाहरण रूप गोस्वामी ने दिया। तो पारिवारिक जीवन में पहला आकर्षण स्त्री के प्रति होता है। जब हम स्त्री कहते हैं तो स्त्री को पुरुष के प्रति और पुरुष को स्त्री के प्रति, ये शास्त्रों में समझना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं शास्त्रों में स्त्रियों की निंदा की गई है, शास्त्रों में स्त्री को नीचा दिखाया गया है, स्त्री से आसक्ति, स्त्री से आसक्ति। तो क्या स्त्रियां इतनी नीचे हैं या इतनी बुरी हैं? स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति। जैसे प्रभुपाद समझाते थे कि न स्त्री बुरी है न पुरुष बुरा है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे अग्नि और मक्खन का, न अग्नि बुरी है न मक्खन बुरा है, लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं तब वो बुरा है, क्योंकि मक्खन पिघल जाएगा, स्वाभाविक है। आप 20 साल तक मक्खन को फ्रीजर में रख दो, कितना वो कड़क हो जाएगा, उसको तो चक्कू से भी नहीं काटा जाएगा, इतना वो कठोर। लेकिन एक थोड़े समय के लिए अग्नि के पास ले आओ, हरि बोल, ऐसे ही पुरुष जीवन 20-25 साल तक कड़क ब्रह्मचारी का पालन करता है, संभाल कर रखता है अपने आप को। ऋषि श्रृंगी कथा सुनी है ना, ऋषि श्रृंगी की, देखा ही नहीं उसने जीवन में स्त्री को। अब ऑफकोर्स इतने भाग्यवान तो हम लोग नहीं होते हैं आजकल, तो उसने देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जैसे स्त्री के संग में आया, बड़ा इतने सुंदर ऋषि कहां से आए हैं, आकृष्ट हो गया, अपने पिता को छोड़कर चला गया, इतना आकृष्ट हो गया। तो इसीलिए न स्त्री में, न स्त्री बुरी है न पुरुष बुरे है, बुरा है उनका संग, उनकी आसक्ति। तो इस तरह से पारिवारिक जीवन का पहला आकर्षण है कि जहां हम स्त्री के प्रति आकृष्ट रहते, जैसे यहां पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति इतना आकृष्ट है, जैसे हम इस श्लोक में भी पढ़ रहे हैं कि उसके हाथों को तकिया बनाकर लेटा रहता। आप सोचिए नारद मुनि जैसे वैरागी इसका वर्णन कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी जैसे वैरागी वर्णन कर रहे हैं, मैत्री मुनि जो भी सारे वैरागी हैं जो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ये दिखलाने के लिए कि कितना खतरनाक है वो जीवन, इसीलिए बहुत संभाल कर रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन भोग का जीवन नहीं है, पारिवारिक जीवन ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी से ज्यादा वैराग्य का जीवन होना चाहिए उनके लिए। अर्थात इन तीनों के पास वो सुविधा नहीं है भोग करने की, इसीलिए वो वैरागी हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में सुविधा होते हुए वैराग को दिखलाना चाहिए, ये श्रेष्ठ वैराग्य है। तो इसीलिए पारिवारिक जीवन बड़ी जिम्मेदारी का जीवन है। तो पहला आकर्षण उसमें हो जाता है स्त्री के प्रति। दूसरा आकर्षण, ये आकर्षण नहीं है, ये खतरे हैं पारिवारिक जीवन के, है ना। जब आकर्षण हो जाता है स्त्री के प्रति तो पूरा टाइम उसी में, अभी आगे आएगा, हम लोग छठे स्कंद पर जाएंगे जब, तो वहां बहुत दिया गया है, तो कैसे अलग अलग आकर्षण, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ तो कैसे दीति ने आकृष्ट किया कश्यप मुनि को, तो कहां वो तैयार थे लेकिन आसक्त हो गए। तो आगे भी बहुत आएगा, छठे स्कंद में, पांचवें स्कंद में, पांचवें स्कंद का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको कहा गया है कि फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक जगत जो है, ये भौतिक भोग जो है एक जंगल की तरह है। तो ऐसे बहुत सारे अभी वर्णन आने वाले हैं। तो स्त्री की आसक्ति ये बहुत बड़ा खतरा है, व्यक्ति आसक्त हो जाता है, उसी में लगा रहता है, समय का उसको ज्ञान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा। इसलिए पारिवारिक जीवन में ये एक आसक्ति को काटना चाहिए। तो फिर कैसे रहना चाहिए, पत्नी साथ में है और मान लीजिए सुंदर है, तो फिर कैसे आसक्ति ना हो, एक कर्तव्य मानना चाहिए। हर पुरुष को ये कर्तव्य मानना चाहिए कि भगवान ने बच्चों का या पत्नी का, इनकी रक्षा करने का, इनका पालन पोषण करने का भार मुझे दिया है, बस ये मेरी सेवा है भगवान के प्रति। तो इसीलिए आसक्त होकर नहीं करना है कि मेरे हैं, ये भगवान ने सेवा के रूप में दिया है, मैं इसको सेवा के रूप में करूंगा। और दूसरा आकर्षण होता है पारिवारिक जीवन में, या दूसरा खतरा होता है, ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया जो स्त्री का खतरा है पारिवारिक जीवन में, आसक्ति, स्त्री नहीं, स्त्री से आसक्ति, ये खतरा, इसको जानिए, स्त्री खतरा नहीं है। तो लोग बोले खतरा है तो हमने क्यों गले में बांध लिया है, स्त्री खतरा नहीं है, स्त्री से आसक्ति खतरा। दूसरा खतरा, क्षमा कीजिए, पारिवारिक जीवन के बारे में बोल रहे हैं आप सब, तो यहाँ वैरागी लोग बैठे हैं, इवन जो परिवार में है वो भी सब वैरागी हैं यहाँ के, क्योंकि आप इतना भागवत सुनने आते हैं, स्वाभाविक है वैरागी हैं, लेकिन जो विषय है उसके अनुसार थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा खतरा पारिवारिक जीवन का है सुविधाएं। सुविधाएं अर्थात जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो स्वाभाविकता थोड़ी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं और उन सुविधाओं में बह जाते हैं हम लोग। जैसे आश्रम है तो आश्रम में सुविधा नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे नहीं होती, लेकिन नहीं होनी चाहिए आश्रम में। लेकिन पारिवारिक, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई आश्रम में रहते हैं, उनकी आम खाने की इच्छा हो गई है ना, सुविधा नहीं है, आई मीन नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उसकी इच्छा हुई तो आज आम खाएगा या कुछ भी करेगा। तो गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं, आम खाने की इच्छा होगी ठीक है आम खरीद लाएंगे, कुछ और खाने की इच्छा हुई कुछ और, पति ने कहा आज मेरी ये खाने की इच्छा, ठीक है वो बन गया। प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि भारत में आज भी नियम है कि सुबह जब पति बाहर जाता है तो पत्नी उससे पूछती है शाम को खाने में क्या खाओगे, है ना, प्रभुपाद कहते हैं इसको, तो जो चाहिए अच्छा ठीक है आज ये बनाओ वो बनाओ। ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है सुविधा, या नहीं होनी चाहिए। फिर से वो अलग बात है कि जितने आम गृहस्थ नहीं खाते उससे ज्यादा ब्रह्मचारी खाते हैं, वो अलग बात है, वो इसको कट कर देना डिलीट ये सुनना नहीं चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में बिना कहे वाली बात, जितना जो मोबाइल गृहस्थ नहीं रख सकते उससे अच्छा मोबाइल आजकल ब्रह्मचारियों के पास होता है, वो अलग बात है, वो ऑफ द रिकॉर्ड है ना, वो बोलना नहीं चाहिए, कैमरे में से भी डिलीट कर देना। तो सुविधाओं से आसक्त तो हो जाता है, तो सुविधाएं उनको भोगों की ओर खींचती हैं। जो सुविधाएं उनको भगवान की भक्ति के लिए मिली हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए मिली हैं, उन सुविधाओं में वो बहकर भोग में लग जाता है। तो इसलिए ये खतरा है, ये दूसरा खतरा, पहला स्त्री है आसक्ति, दूसरा सुविधाएं हैं। तो उन्हें सुविधा मिल जाती है, थोड़ा रहने के लिए घर, सोने के लिए अच्छी सुविधा, खाने के लिए अच्छा चीज, तो उसमें फिर बह जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मंगल आरती आना है, पत्नी कहती कल रात को बहुत देर हो गई थी, बोले हाँ सही है, सो जाते हैं, अलार्म बजता है बंद कर देते हैं, तो ये सुविधा है। तो ये जानना चाहिए कि पारिवारिक जीवन में जो सुविधा मिली है भोग के लिए नहीं, ये इसलिए मिली है कि अपनी इंद्रियों को संयम में रख के सारा समय बाकी भगवान की सेवा में लगाएं। ये पारिवारिक जीवन का उद्देश्य है। पारिवारिक जीवन का उद्देश्य स्त्री में सुविधाओं में फंसना नहीं है, स्त्री और सुविधा को लेते हुए उनका उपयोग करते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग करते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, और जितनी सुविधाएं हैं पारिवारिक जीवन की उसको भगवान की सेवा में लगाएं। ये परिवार पारिवारिक जीवन है। भगवान ने अगर हमें बहुत बड़ा घर दिया है तो बुलाइए भक्तों को और कीर्तन करिए, भगवान ने बहुत धन दिया है तो मंदिर बनवाइए, भगवान ने और धन दिया है भक्तों को भोजन करवाइए, बुलाइए वैष्णवों को घर पे, कीर्तन हो प्रसाद हो, ये उपयोग है। ये सुविधा किस लिए दी, भगवान क्यों सुविधा दे रहे हैं इसको जानिए। भगवान ने आपको धन इसलिए नहीं दिया कि आप अपना घर बड़ा बना लें, इसलिए नहीं दिया 700 करोड़ का घर बनाए। भगवान ने धन इसलिए दिया है कि जाके वैरागियों को दो, वो मेरा मंदिर बनाए। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है मेरा धन जिसने दिया है। मान लीजिए हम आपको 2000 रुपया देते हैं, हम लोग इतना ही सोच सकते हैं, हम थोड़े छोटे लोग हैं, करोड़ों में नहीं सोचते। हम आपको 2000 रुपया देते हैं, ये जाओ और जाकर किसी उस व्यक्ति को दे दो, वो कुछ खरीद कर लाएगा हमारे लिए। मान लीजिए हमने कहा, तो आपको हमने 2000 दिया, आपका कर्तव्य है आप ले जाके उस व्यक्ति को दें ताकि वो हमारे लिए कोई चीज खरीद कर ला सके। तो हमें चीज चाहिए थी, हमने केवल आपको पैसा दे दिया कि आप उसको दे दीजिए। इसी तरह भगवान को मंदिर चाहिए अपने, और भगवान ने आपको पैसा दे दिया कि लो जाओ ये वैरागियों को दो और उनको बोलो मंदिर बनाए ताकि उनको तकलीफ ना हो। और हमने क्या किया, बीच में वो जो 2000 रुपया लिया उसमें से 1900 रुपया अपनी जेब में रखा, 100 रुपया जाके उसको दिया, जाओ वो व्यक्ति ने आप कुछ लाने को कहा था। तो जो 2000 की चीज आनी थी वो 100 रुपये में आई, अब व्यक्ति के पास है क्या हुआ, बोले इतना ही मिला। तो ऐसे ही है, जो पैसा भगवान ने, तो किसने दिया है पैसा आपको, भगवान ने दिया है, तो उससे मंदिर बनाने के लिए तो भगवान ने आपको जिम्मेदारी सौंप दी कि ये लो विश्वास करके कि ये पैसा लो मेरा मंदिर बना देना। और आपने क्या किया, अपना घर बना दिया, अपने परिवार को आनंद दे दिया, अपने घरों में गाड़ियां बंगले हेलीकॉप्टर खरीद लिए, और भगवान के मंदिर में 10 रुपये जाके डाल दिए। ये हमारा सुविधाओं से आसक्ति, ये पारिवारिक जीवन है, क्या लाभ है ऐसे जीवन का? हर व्यक्ति सोच सकता है, जो अमीर व्यक्ति जिन्होंने करोड़ों कमाए, सोचिए क्या थे वो अपने बचपन में, कितना पैसा कमा लिया था, भगवान ने दिया उनको, लेकिन फिर अब आसक्त, भूल गए कि भगवान ने दिया, किस लिए दिया, मंदिर बनाओ। और भक्त जाते हैं उनके पास मांगने के लिए, मंदिर के लिए दीजिए, तब नहीं देते। वो भक्त क्यों जाते, भगवान भेजते हैं याद दिलाने के लिए उस व्यक्ति को कि मूर्ख ये पैसा मैंने मंदिर के लिए दिया था, वापस दो, फिर भी व्यक्ति नहीं देता। ये आसक्ति है, ये पारिवारिक जीवन है। क्यों? वो सोचता है मेरे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनको कोई तकलीफ ना हो तो मैं सारी सुविधा कर जाऊं, मरने से पहले बड़ी शांति होगी मुझे देख करके, मैंने हर बच्चे के लिए बंगला बना दिया, बैंक में बैलेंस रख दिया। प्रभुपाद लिखते हैं, उदाहरण देते हैं इन्हीं तात्पर्यों में, कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं भारत में, इस तात्पर्य दो तीन तात्पर्य के बाद प्रभुपाद कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं भारत में जो बड़ा आसक्त था पुरंजन की तरह। प्रभुपाद कहते हैं 6 पत्नियां थी उसकी, इंग्लिश में लिखा 6 डजन, हिंदी में हमें पता नहीं क्या लिखा, 6 डजन वाइफ। प्रभुपाद कहते 6 पत्नियां थी उसकी, और उन सबके अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी, और दिन भर बोले जब हम उनसे मिलने गए, बात करने गए, तो हमसे बात करते करते भी वो, उसकी चिंता ये थी कि वो पैसा कमाए कैसे, क्योंकि हरेक को उसको 5-5 लाख रुपया देना था। तो प्रभुपाद कहते यही उसकी चिंता थी, लिखा है प्रभुपाद ने स्पष्ट। तो ऐसी आसक्ति सुविधा की, ये दूसरा खतरा है पारिवारिक जीवन का। खैर, पारिवारिक जीवन के विषय में तो बहुत बोला जा सकता है, समय आज नहीं है, तो थोड़े ही खतरों का आप इतना ही संभाल लीजिए, बहुत हो जाएगा, बाकी खतरे सुनेंगे तो खतरनाक पारिवारिक जीवन त्याग देंगे, इसलिए थोड़े बहुत ठीक हैं। परिवार के जीवन, पारिवारिक जीवन में यही दो चीजें हैं, आशाएं और खतरे, और कुछ है नहीं पारिवारिक जीवन में, है ना। व्यक्ति को आशाएं बनी होती हैं, एक दिन आनंद आएगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, सब कुछ ठीक होगा मेरे जीवन में, होता ही नहीं है कभी। तो ये आशाएं बनी हुई हैं और दूसरी ओर खतरे बने हुए हैं। तीसरा कुछ पारिवारिक जीवन में है नहीं अगर व्यक्ति भक्ति नहीं करता था। तो इसलिए ये परिवार का जीवन है, तो पहला खतरा स्त्री है, दूसरा खतरा सुविधा है, तीसरा खतरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्र हो जाता है व्यक्ति, और स्वतंत्र होने से अपने खुद के भक्ति के मार्ग निकाल लेता है, ये और एक बहुत बड़ा खतरा है स्वतंत्रता, कि उसको लगता है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं। नहीं, जिस प्रकार ब्रह्मचारी आश्रम में अधीन रहते हैं, ऐसे ही गृहस्थ को, जो भक्त हैं, जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उनको अधीन रहना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए अपने आप को। जहां गृहस्थ अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं तो फिर भगवान से स्वतंत्र हो जाते हैं, सरल है। जहां अधीन मानते हैं भगवान की शरण में रहते हैं, इसीलिए गृहस्थ जीवन स्वतंत्र नहीं है। गृहस्थ जीवन भी वही है, बस केवल ब्रह्मचारी अकेले रहते हैं, गृहस्थ दो साथ में रहते हैं, इतना ही अंतर। और साथ में क्यों रहते हैं? एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, कि अगर एक मंगल आरती के लिए नहीं उठा तो दूसरा उठाए उसको, इसलिए भगवान ने साथ में बिठाया उनको, और कोई कारण नहीं है। लेकिन हमारा उल्टा होता है, एक उठने लगता है दूसरा उसको सुला देता है, सही है ना, गृहस्थों से पूछ रहा हूं ना, भगवान ट्रू, सही है ना, एकदम सही है, अलार्म बजा, बंद करो, बाद में देखेंगे। इसलिए नहीं हुआ है विवाह, इसलिए हुआ कि एक सो रहा है दूसरा उठा, ए टाइम हो गया, मंगल आरती के लिए जाना है, देखो जब करना है। तो इसलिए सहयोग की भावना चाहिए परिवार में। पारिवारिक जीवन मतलब एक दूसरे को क्यों सहयोग करना है? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये पारिवारिक जीवन के कुछ खतरे हैं, कभी किसी और दिन और विस्तार से और खतरों का वर्णन करेंगे। तो ऐसे ये जो पुरंजन था, ये आसक्त हो गया परिवार में, स्त्री में, भोगों में, स्वतंत्र मानने लगा अपने आप को, वैसे पारिवारिक जीवन का और एक खतरा धन भी है। धन भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे शक्ति आती है। हमें लगता है हम बड़े शक्तिशाली हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पुरंजन बड़ा आसक्त तो हो गया अपने परिवार से, अपनी पत्नी से विशेषता, और ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसने देखा नहीं कि समय जा रहा है। प्रायः बूढ़ा हो गया पुरंजन, इतना उसने भोग कर लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना आसक्त था। ऐसे ही हमारा जीवन है। अभी विवाह होता है, हमें तो लगता है 25 साल तक व्यक्ति को यही लगता रहता है कि अभी तो विवाह हुआ है, अभी तो बच्चे हुए हैं, अभी तो बड़े हुए हैं। भूल जाता है, बाल सफेद होना शुरू हो गए, शरीर जर्जर होना शुरू हो गया, वो सब भूल जाता। तो पुरंजन भूल गया, समय किसी के लिए नहीं रुकता। काल बड़ा प्रभावी है, ये जान लीजिए। काल का कार्य क्या है? काल का प्रमुख कार्य है विनाश, और काल हर चीज का विनाश करता है, और ये किसी के लिए नहीं रुकता, कोई इसको पकड़कर नहीं रख सकता। एक ही चीज व्यक्ति कर सकता है काल के साथ, उसको रोक नहीं सकता, उसको पकड़ नहीं सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, केवल उसका उपयोग कर सकता। बस एक ही चीज है काल के साथ करने की। तो काल इतने प्रभावी, वैसे काल देखा जाए तो ये भगवान का एक उपहार है हमारे लिए। भगवान ने हमें दे दिया है, किस लिए? ये लो एक बहुत बढ़िया उपहार, क्या करो इससे? इससे मुझे प्राप्त करो। मनुष्य जीवन में समय, जैसे प्रभुपाद भी इस तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन का समय आत्म साक्षात्कार के लिए है, व्यर्थ करने के लिए नहीं है। भगवान ने दिया है हमें उपहार, लो और करो इसको उपयोग, अच्छा उपयोग करो और मुझे प्राप्त करो। और बड़े विश्वास से दिया है भगवान ने, हमें भगवान का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने विश्वास करके दिया कि ये जीव इस कार्य का, इस काल का सही उपयोग करेगा। स्वतंत्रता भी दी है हमें, और हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके इस काल का, इस समय का दुरुपयोग करते हैं और भगवान को प्राप्त नहीं करते। इसीलिए काल बहुत प्रभावी है। प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान को, भगवान की सेवा में इसको लगाएं, क्योंकि जैसे प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि आप अगर करोड़ों करोड़ों रुपया भी दे दीजिए तो एक क्षण भी वापस नहीं ले सकते। जैसे अभी 9:22 हो रहे हैं, हमने क्लास 8:30 पे शुरू की थी, करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिए, वो 8:30 वापस नहीं आएगा, वो चला गया समय। तो एक क्षण भी हम खरीद नहीं सकते हैं करोड़ों रुपया खर्चा करके, मतलब कितना मूल्यवान है ये समय। बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें इस समय का। जीवन में व्यक्ति को तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, जीवन में समय का कैसा उपयोग किया, कैसे उसको खर्चा किया। खर्च होता है ना, आप रख ही नहीं सकते समय जो है आप उसको। जैसे कुछ धन होता है व्यक्ति बचा सकता है, उसको 500 रुपए तो खर्चा करे या ना करे, लेकिन धन, समय ये एक ऐसा धन है जो खर्च होना ही होना है। केवल कैसे खर्चा किया ये हमारे हाथ में है। खर्चा किया या नहीं किया वो हमारे हाथ में नहीं है, है ना, पकड़ नहीं सकते। यानी हाथ में रखा वो खर्चा हो रहा है, जा रहा है, अब कैसे गिरा। जैसे जल है, आदमी जल हाथ में लेता है, वो गिरा सकता है, तो उसके ऊपर है वो कैसे गिरा है। कभी कोई अपने बच्चे के ऊपर गिराता है आनंद लेने के लिए, उसको खेल खेल में, कभी कोई सूर्य की ओर गिराता है, कभी कोई गंगा में जल अर्पण करता है, जल ही अर्पण कर रहा है, क्योंकि जल रुकने वाला नहीं है। समय ऐसा है, रुकेगा नहीं, खर्चा होना है। पहली चीज हमें जाननी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कैसे समय का हमने खर्चा किया, बहुत महत्वपूर्ण है। काल का वर्णन है इस अध्याय में, इसीलिए। तो समय का कैसे खर्चा किया आपने, ये संभाल, ये हमें याद रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार चला गया, खर्चा हो गया, फिर आप उसको वापस लेकर कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं कि एक बार जाने के बाद उनको वापस नहीं लाया जा सकता।
जैसे हमने आपको एक बार एक कथा सुनाई थी कि एक महिला एयरपोर्ट पर बैठी थी, उनका प्लेन लेट हो गया, तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बुक पढ़ लेते, तो उन्होंने एक बुक खरीदी और एक बिस्किट का पैकेट खरीदा कि बैठकर खाएंगे और बुक पढ़ेंगे जब तक देर होती है प्लेन में। तो बैठी हैं, तो ऐसे बैठी थी, तीन सीट थी, तो एक बीच में सीट थी वो बैठी थी और उधर एक पुरुष बैठा था और बीच में बिस्किट का पैकेट। तो उन्होंने एक बिस्किट लिया और खाया और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने भी एक बिस्किट लिया और खा लिया। कैसा लगेगा आप लोगों को? अरे आप, इतना गुस्सा आएगा ना, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि कितना असभ्य व्यक्ति है। ठीक है, अगर चाहिए था बिस्किट तो मांग लेता कि एक बिस्किट दे दीजिए क्या, बिना पूछे। खैर वो चुप रही, एयरपोर्ट है, कहां हंगामा करना, एयरपोर्ट में लोग सभ्य होते हैं ना, कम से कम दिखाते हैं कि सभ्य हैं। तो फिर उसने दूसरा बिस्किट लिया और बड़े आश्चर्य की बात, वो व्यक्ति ने भी दूसरा बिस्किट ले लिया और एक उसने ले लिया, जिसको बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, एक खा लिया, ये दूसरा भी। तो खैर ऐसे करते उसने सोचा छोड़ो झगड़ा क्या करना, बिस्किट की तो बात है, अब एक बिस्किट बचा था, एक वो खा रही थी, एक ये खा रहे थे, वो एक, अब एक बिस्किट बचा। तब ये सोच रही थी अब देखती हूँ ये क्या करता है, ना बदमाश व्यक्ति है। तो उसने क्या किया, बदमाश ने उसके आधे टुकड़े किए, एक बिस्किट तो उसका आधा किया, आधा खुद खा लिया, आधा छोड़ दिया इसके लिए। अब इसको तो बहुत, अब ये सहन नहीं हुआ कि ये क्या कर दिया इसने। तो गुस्से में पांव पटकती हुई वहां से चली गई और बड़ा गुस्सा आया कि है। खैर कुछ नहीं कहा, प्लेन में चली गई। तो प्लेन में जाकर बैठी, अब प्लेन चल दिया, प्लेन उड़ गया। अब प्लेन उड़ने के बाद उन्हें फिर बुक पूरी नहीं पड़ी थी, तो अपना चश्मा ढूंढने के लिए उन्होंने बैग खोला, तो बैग खोला तो देखा कि उनके बिस्किट का पैकेट बैग के अंदर पड़ा हुआ है। जो बिस्किट का पैकेट उन्होंने खरीदा था वो बैग के अंदर पड़ा है। और तब उनको समझ में आया कि वो व्यक्ति मेरे बिस्किट नहीं खा रहा था, मैं बिना बोले उसके बिस्किट खा रही थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बिस्किट का पैकेट खरीदा, बैग में रख लिया, आके बैठी, देखा बिस्किट का पैकेट है, उन्होंने खाना शुरू। तो उनको इतना दुख हुआ कि मैं इतना वो व्यक्ति के बारे में, और वो व्यक्ति कैसा था, शांत बैठा था, और इतना ही नहीं, अंत में उसने आधा करके दिया कि चलो ये आधा। तो उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब प्लेन उड़ गया था, वो जाकर उसको सॉरी बोलना, क्षमा मांगना, कुछ नहीं हो सकता था। तो इसीलिए समय जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, मुंह से बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जाते, और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती। एक बार गोली मार दी, मार दी, ठीक है, गोली मारने के बाद आप भाग नहीं सकते, ये गलती हो गई, गलती हो गई, जरा सा इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, नहीं घूमने वाली हो तो गई, लग गई, मार दिया। इसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं हो सकते। हाँ, अंग्रेजों ने एक शब्द छोड़ दिया हमारे लिए, सॉरी। आप किसी को कुछ भी बोल दो, अपमान कर दो, ठीक है सॉरी, खत्म, होता नहीं है। इसीलिए समय ये चला जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। तो हमें ये जानना चाहिए कि पहला चीज, जैसे हम बता रहे थे जीवन में तीन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज समय कैसे खर्चा किया हमने, दूसरी चीज धन कैसे अर्जन किया और कैसे उसका उपयोग किया, ये भी बड़ा संभालना चाहिए। तो इसीलिए पहली चीज समय, हमारे जीवन में हमने कैसे व्यर्थ किया या खर्चा किया, जो भी है, क्योंकि जीवन का सही उपयोग है भगवान की सेवा में लगाना, तो उसको करना चाहिए। तो इस दूसरा चीज धन कैसे अर्जन किया और कैसे उसको खर्च किया, व्यक्ति को दोनों में सावधान रहना चाहिए। ये तीनों चीजें सावधान रहने के लिए हैं। तो पहले सावधान रहिए कि आप धन, अपना समय कैसे खर्चा कर रहे हैं, व्यर्थ मत कीजिए। ये जान लीजिए कि ये जो समय है आपका, एक बार चला गया तो जैसे बॉक्स बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ आगे जीवन में कुछ लेना है, या आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कुछ चाहिए, तो आपने बॉक्स में पैक कर दिया, सील कर दिया, उसको सब टेप वेप लगा दिया, वो पैक होकर चला गया। अब बाद में आपको ध्यान आया कि अरे 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 अरे, वो बॉक्स में जो डाला वो तो गलत था, वो नहीं, ये डालना था, लेकिन वो बॉक्स चला गया। ऐसे ही हमारे जीवन में 24 दिन में, हर दिन में 24 बॉक्स पैक होते रहते हैं, हर एक घंटे में बॉक्स पैक हो गए, आपने जो किया वो पैक होके यमराज के पास चला गया, राइट, सील हो गया, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, या भगवान के पास चला गया, प्रकृति के पास चला गया। मान लीजिए आप कहेंगे हम लोग तो यमराज के पास नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, प्रकृति के पास चला, मतलब फिक्स हो गया। अब आप वो बॉक्स खोल कर, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा गया बॉक्स चला गया। तो ऐसे सोचो कि आप कितना सावधान रहना चाहिए बॉक्स पैक करते समय। एक बार पैक हो गया, सील हो गया, सरकार भी उसको नहीं, आप कित कोई नेवी में काम करते हो, गवर्नमेंट का कुछ भी दिखा दो कि मैं नेवी का आदमी हूं, डिफेंस का आदमी हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं, कुछ भी हो, बॉक्स पैक हो गया चला गया, तो कितना संभालना चाहिए। रोज 24 बॉक्स पैक होके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या क्या डाल रहे हैं। क्यों? बाद में वही सब मिलने वाले हैं, यमराज खोल खोल के दिखाएंगे जब हम जाएंगे, ये देखो ये किया तुमने उस दिन, इतने बजकर इतने मिनट पर ये किया था। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं है ना, ये बॉक्स में पैक है, आपको याद है या नहीं वो छोड़ दीजिए। तो ऐसे ये समय है, इसीलिए समय को कैसे उपयोग किया, ये जो 24 बॉक्स हैं, 24 घंटे हैं, ये हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, धन कैसे अर्जन किया और उसका व्यय कैसे किया, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर धन हमने गलत तरीके से अर्जन किया तो भी यमराज की मार पड़ने वाली है, और गलत तरीके से उसका उपयोग किया तो भी यमराज की मार पड़ने वाली है। इसीलिए धन का अर्जन भी गलत कार्य से, गलत तरह से नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए इसमें, और धन का व्यय या धन का उपयोग भी सही होना चाहिए, धन का उपयोग होना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए धन को। तो ये दूसरी चीज है जीवन में जिसमें हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम अपने धन का सही रूप से अर्जन करते हैं और उसका सही रूप से उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा। और तीसरी चीज जिसके प्रति सावधान रहना चाहिए जीवन में वो है ज्ञान, कि ज्ञान जो हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान का हमने कहां उपयोग किया, क्या उस ज्ञान का मैंने जीवन में उपयोग किया या नहीं किया। रोज भागवत में सुनते हैं लेकिन भागवत के बाहर जाकर वो ज्ञान बंडल में बांधकर फेंक जाते हैं, है ना, या इसी कमरे में छोड़ जाते हैं कि ठीक है जो भी ज्ञान है बड़ा अच्छा है, बांधो फेंक के चले जाओ, घर कमरे के बाहर, हॉल के बाहर निकले, मंदिर के बाहर, सब खत्म। नहीं, जो ज्ञान है उसका कैसे उपयोग किया इसके प्रति सावधान रहिए। तो जो भी हमें ज्ञान मिला है उसको जीवन में उतारना आवश्यक है, जीवन को बदलना आवश्यक है। केवल नाम के लिए भक्त मत बनिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि पापी जीवन से गृहस्थ बनना अच्छा है, लेकिन केवल नाम के लिए गृहस्थ नहीं बनना चाहिए, गृहस्थ जीवन के उद्देश्य को समझकर उसका पालन करना चाहिए। तो इसलिए ये तीन चीजों के प्रति बड़े सावधान व्यक्ति को रहना चाहिए कि वो किस तरह से अपने समय को खर्च कर रहा है, कैसे धन का अर्जन और धन का व्यय कर रहा है, और ज्ञान को कैसे वो उपयोग कर रहा है। अर्थात जो हम सुने भागवत को उसको जीवन में अपनाएं, उसको जीवन में लाने का प्रयास करें, आचार्यों के जीवन से सीखें। आचार्यों की जीवनी इसीलिए दी जाती है, भागवत भरी हुई है भक्तों की कथाओं से। भागवत में केवल कृष्ण की कथाएं नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं नारद मुनि पुरंजन प्राचीन भरीषित, कहां कृष्ण का नाम है, कोई कथा ही नहीं है कृष्ण की अभी तक आई, बस थोड़ा सा पहले स्कंद में हमने पढ़ लिया, दूसरे स्कंद से लेकर कहां कथा आ रही है कृष्ण की, लेकिन भक्तों की कथाओं से भरा हुआ। क्यों? उनके उदाहरण से, उनकी जीवनी से सीखें, उन्होंने जो अपने आचरण से, उन्होंने जो ज्ञान दिया, अपनी शिक्षाएं दी, उनको जीवन में उतारें, तब जीवन सफल होगा। और हमें इस दृष्टि में स्वार्थी होना चाहिए, स्वार्थी अर्थात कम से कम हम अपने जीवन में उसको उतारें, बाकी कोई उसको जीवन में लेता है या नहीं लेता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें यह नहीं देखना है वो 20 साल से भक्त है वो पालन नहीं करता, वो 10 साल से भक्त है वो पालन नहीं करता, मैं तो अभी 2 साल का भक्त हूं मैं क्यों पालन करूं। हमें अपने जीवन में उसको उतारना, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना प्लेन खुद उड़ाना है। जहां जैसे प्लेन उड़ाने की बात होती है तो प्लेन उड़ाने के लिए पहले प्रशिक्षण दिया जाता है व्यक्ति को, सीधा प्लेन पे नहीं बिठाया जाता। तो प्लेन वाले जहाँ उसको नीचे, उसको जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे बटन दबाओगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करो, वो सब सिखाया जाता है उसको, प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन अंत में जब प्लेन ऊपर वो उड़ाता है तो वो अकेला होता, उसको उड़ाना है। तो नीचे आपको गुरु प्रशिक्षण दे सकते हैं, सब बता सकते हैं, ये करना जीवन में ये जरूरी है, जीवन में ये जरूरी है, ऐसे आचरण करो वैसे आचरण करो, ये शास्त्र में कहा है, लेकिन अंततः प्लेन आपको उड़ाना है। तो इसीलिए हमें इस दृष्टि से इसको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। तो कैसे उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में अपनाया, ये महत्वपूर्ण है, हमें उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये तीन चीजों को कभी आप भूलिए नहीं, याद रखेंगे तो हमेशा कृष्ण का स्मरण रहेगा। क्यों? पहली चीज कि हमें क्या था, पहला चीज समय, समय को व्यर्थ नहीं करना है। तो हमेशा स्मरण रहेगा कि जहां भी समय है कृष्ण में लगाइए, कृष्ण की सेवा में लगाइए, जब समय मिले कृष्ण की सेवा में। अगर कुछ सेवा नहीं है, जपा कीजिए, पढ़ाई कीजिए, शास्त्र सुनिए, प्रवचन सुनिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास व्यर्थ का समय है। दूसरी चीज, धन कैसे अर्जन करना और धन कैसे व्यय करना। अर्जन करते समय ध्यान रखिए कि क्या कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, मैं ये जो अर्जन इस मार्ग से कर रहा हूं क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे, नहीं छोड़ दीजिए। और जब खर्चा भी करने जा रहे हैं तब भी सोचिए, मैं ये शराब की बोतल खरीदने जा रहा हूं कृष्ण प्रसन्न होंगे इससे, हाँ होंगे, ठीक है फिर लेके पी लीजिए, कोई बात नहीं। तो कृष्ण भावना भावित रहेंगे अगर ये तीन चीजें, और ज्ञान, ज्ञान का उपयोग कि मैंने जो सुना क्या मैं ये चीज ठीक से कर रहा हूं, ये अपने जीवन में अपना रहा हूं या नहीं, कृष्ण भावना भावित रहेंगे। तो ऐसे ये काल समय की बात है, तो हमें ध्यान से इसको उपयोग करना चाहिए और जानना चाहिए कि ये जो काल है, समय है, ये बहुत बड़ा उपहार है। और इस समय के, वैसे तो इस जगत में हम किसी चीज के मालिक नहीं हैं, लेकिन हमें जो समय भगवान ने दिया है उसके मालिक हम हैं, उसके इंचार्ज हम हैं। तो दिन में 24 घंटे या मिनट या सेकेंड्स, हर सेकंड के मालिक हम हैं, कैसे इस्तेमाल करना है हमें जानना चाहिए। कितने सेकंड्स होते हैं एक दिन में? 36,000। हाँ, सारे इंजीनियर बैठे हुए हैं यहां पर, हाँ, एमटेक बीटेक, दिन में कितने सेकंड होते हैं ये नहीं पता है। हाँ, 86,400। अच्छा, यस करेक्ट, 86,400 सेकेंड्स। तो ये 86,400 सेकेंड्स के आप मालिक हैं। हर सेकेंड के क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर सेकेंड उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, कोई व्यर्थ नहीं। समय व्यर्थ करना मतलब भगवान के द्वारा दिए गए उपहार को आप व्यर्थ कर रहे हैं। तो ऐसे हर सेकेंड के मालिक हम हैं। तो पुरंजन व्यर्थ कर रहा था उस समय को, और फिर उस समय उसकी शहर पर चांदवेग, चांदवेग मतलब गंधर्वों के राजा चांदवेग, ऐसा नारद मुनि कहते। दरअसल चांदवेग मतलब काल, काल का प्रभाव हो गया, बूढ़ा हो गया, अभी बूढ़ा हो रहा है, और काल का बड़ा तीव्र प्रभाव। काल किसके साथ आया? 720 सैनिक। 720 कैसे? 360 दिन और 360 रात मतलब दिन और रात को अलग अलग किया गया, 12-12 घंटे। तो 360 दिन जो सफेद रंग के थे, 360 काले रंग के, ऐसे 720 सैनिकों के साथ आया। अर्थात दिन को पुरुष कहा गया और रात्रि को स्त्री कहा गया, तो 360 पुरुष और 360 स्त्रियों के साथ आक्रमण किया उसने, दिवस और रात्रि। तो यही है ना, आयुर्हर्ति वै पुंसा उद्यनस्तम चयन नसो यस्याते तत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। भागवत में कहा गया है कि आयुर्हर्ति वै पुंसा, हरेक व्यक्ति की आयु हर लेता है। कब? उद्यनस्तम चयन नसो, जो सूर्य है उदय होता है और अस्त होता है, आयु हर लिया। हम लोग तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते रहते हैं, लेकिन है क्या? आयुर हरति वैपुंसाम उद्यन अस्तम चयन नसौ तस्यार्थ यक्षणो नीत। लेकिन उन लोगों की आयु नहीं हरता, कौन? उत्तम श्लोक वार्तया, जो अपना हर क्षण उत्तम श्लोक वार्तया भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में लगाते हैं, उनकी आयु नहीं हर सकता सूर्य, उनको कुछ नहीं कर सकता सूर्य। क्यों? क्या वो मरते नहीं है? क्या भक्त मरते नहीं? शुद्ध भक्त मरते नहीं? क्या होता, आयु क्यों नहीं हरता? ऐसा क्यों कहा गया भागवत में? आयु हरती वही पुंसा उद्यन अस्तम चयन सो। एक दिन सूर्य उदय हुआ, अस्त तो हो गया, आपकी आयु हर कर ले गए और आप बड़ा प्रसन्न होते हैं व्यक्ति। हम लोग तो नहीं, बाहर के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा हो गया, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आयु हरती वही पुंसा। तो भक्तों की क्या आयु नहीं हरता? क्या भक्त नहीं मरते? क्या भक्त बड़े नहीं हो रहे? जैसे हैं वैसे ही चार कुमार उतने ही हैं? नहीं, भक्त भी हो रहे। फिर उनकी आयु क्यों नहीं हरता? क्योंकि वो समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय का उपयोग कर रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए। इसकी उनकी आयु हर नहीं रही है, उनकी आयु का उपयोग हो रहा है। अच्छा है जितना ज्यादा वो जितने ज्यादा सूर्य निकल रहा है और जा रहा है, ताकि उतना ज्यादा वो भगवान के निकट चले गए। हर एक दिन भक्त ने उपयोग किया भगवान के निकट जाने के लिए, इसलिए उसकी आयु नहीं हरी। आयु हरने का मतलब क्या है? आयु हरने का मतलब है वो एक दिन और भगवान से दूर चला गया, उसको कहा जाता आयु हरना। क्यों? क्योंकि आयु का उद्देश्य क्या है? भगवान के निकट जाना। लेकिन अगर आयु से हम भगवान से दूर जा रहे हैं तो आयु का हरण हो रहा है। तो आयु हरती वही पुंसा उन लोगों का जो भगवान के निकट नहीं जाते, जो एक दिन और दूर चले गए, एक दिन और दूर चले गए। क्यों? और आनंद ले लिया, एक फैक्ट्री और लगा ली, एक दुकान और खरीद ली, एक घर और बना लिया, एक विवाह और कर लिया शायद। तो आयु हरती वही पुंसा उद्यन अस्तम चयन नसो। लेकिन भक्त उनका क्या होता है दिन में? एक दिन और निकट आ गए कृष्ण के, इसलिए वो प्रसन्न है कि बहुत अच्छा है, जल्दी जाए, जल्दी, सूरज क्यों इतना नहीं निकल रहा, जल्दी निकले, और एक दिन निकट, और एक दिन निकट। इसीलिए जन्मदिन मनाने का अधिकार केवल भक्तों को है, हैप्पी बर्थडे बोलने का अधिकार या सुनने का अधिकार केवल भक्तों को है। किस भक्त को? आप लोग सब प्रसन्न हो गए, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि ठीक है हमें हैप्पी बर्थडे बोल। उस भक्त को जिसने वो पूरा साल भगवान को समर्पण किया पूर्ण, उसको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए कि एक साल और मैं भगवान की सेवा कर सका, मेरा सौभाग्य है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। बाकी बाहर के लोगों का हैप्पी बर्थडे क्या हैप्पी है? मृत्यु के निकट आ गए, हैप्पी बर्थडे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और उसको एक ऐसे मशीन पर खड़ा कर दिया जो मशीन धीरे धीरे अग्नि की ओर जा रही है, मतलब अंत में उसको जलाकर खत्म करने वाली है, लेकिन वो बड़ी धीरे जा रही है, ऐसे चलते, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उस पे वो खड़ा है। तो जैसे एक एक दिन आगे जा रही है, वो बोल रहा है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जाकर रहा है मरने के लिए। अब अगर सामने उसको दिख जाए, वो खुश होगा, बर्थडे मनाएगा, पार्टी करेगा, बलून लगाएगा? उसको दिख रहा है कि सामने अग्नि और ये मशीन धीरे धीरे जा रही है। बस बाहर वालों में यही कमी है, उनको दिख नहीं रहा, उनके वो पर्दा लग गया है। और वो पर्दा कैसा है? बड़ा खूबसूरत पर्दा लगा हुआ है, तो पीछे की अग्नि दिखाई नहीं दे रही, पीछे का गड्ढा, पीछे का मृत्यु दिखाई नहीं दे रही, वो सुंदर पर्दा, और हमेशा वही पर्दा दिख रहा है। 20 साल हो गए वही पर्दा, 40 साल वही पर्दा, 60 साल वही पर्दा, जबकि वो पहले इतने दूर थे, वो पास आ गए मृत्यु के, लेकिन पर्दा लगे होने के कारण वही जीवन में आना। हैप्पी बर्थडे काल, इसीलिए काल समाप्त करता है। तो भक्तों को आनंद लेना चाहिए भगवान की भक्ति में। तो चंद्रवेग ने आक्रमण कर दिया अपने सभी सैनिकों के साथ, तो जो सर्प था पांच फनों वाला, अर्थात हमारी जो वायु है, प्राण वायु इत्यादि, उन्होंने बड़ा प्रयास किया उसको करने का, रोकने का, कुछ समय तक लड़े, लेकिन फिर क्षीण हो गई। और फिर उस समय काल की पुत्री जरा वो घूमते घामते आ गई, और नारद मुनि कहते हैं कि घूमते घामते इस पृथ्वी पर आई और मुझसे मिली और मुझसे विवाह करना चाहती थी। मतलब नारद मुनि बूढ़ा होना चाहिए था। तो बोले मैंने मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो बड़ी क्रोधित हो गई मेरे ऊपर और मुझे श्राप दे दिया कि तुम कभी भी एक जगह नहीं रहोगे। नारद मुनि ने कहा बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो मतलब क्या है कि जो लोग भगवान की भक्ति में नारद मुनि की तरह नहीं लगे हैं वो तो निश्चित जरा से प्रभावित होंगे। जरा मतलब बुढ़ापा। हम लोग कहते हैं ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जरा मतलब बुढ़ापा। तो बुढ़ापा तो उनको आना ही आना है, लेकिन नारद मुनि को कभी बुढ़ापा आता है? देखा आपने कभी नारद मुनि वाइट बाल हो गए, छड़ी लेकर घूम रहे हैं? नहीं, उनको जरा से, उन्होंने शादी नहीं की जरा से। तो जो लोग शादी करते हैं जरा से, विवाह करते हैं, जरा सबके पास आती है विवाह करने के लिए। जो लोग नहीं करते हैं वो लोग नारद मुनि की तरह सुखी रहते हैं। तो नारद मुनि ने मना कर दिया तो जरा फिर उन्होंने, नारद मुनि ने यवनों के राजा थे भय, उनसे कहा कि उनसे जाके शादी कर लो, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो बड़ा भय भी लाता है ना। व्यक्ति बूढ़ा होने के साथ साथ भयभीत होने लगता, पता नहीं कितने साल बाकी हैं, क्या होगा, अगली जन्माष्टमी में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि साल में एक ही बार जन्माष्टमी पे आते हैं, तो को लगता है अगले साल मिलेंगे कि नहीं। तो इसीलिए भय, तो भय से उसने विवाह करने के लिए कहा। तो भय के पास गई और नारद मुनि ने कहा तुम भय से विवाह करो। तो भय ने भय से के पास गई तो भय ने कहा ठीक है मैं स्वीकार करूंगा। तो उसने अपनी बहन के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। और फिर आगे जो प्रभाव हुआ समय का पुरंजन के ऊपर, कैसे उसकी मृत्यु और कैसे अगला जीवन उसका हुआ, ये अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे।